श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12। अमानित्वम अधम्बेत्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनः अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टो निष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा। ये लास्ट लाइन बड़ी जबरदस्त है। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा। भगवान के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार केवल यही जो विषय हैं, इन्हें ही ज्ञान कहा जाएगा और बाकी सब कुछ अज्ञान है। जरा हम पढ़ेंगे। विनम्रता, धर्महीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। एक अद्भुत बात है कि इसमें कहीं फिलॉसफी, क्षमा कीजिएगा, फिलॉसफी की बात तो आई है लेकिन वो परम सत्य की दार्शनिक खोज है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में भगवान कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनके अध्ययन से व्यक्ति आत्म तत्व की खोज नहीं करता है। हम किसी ज्ञान की निंदा नहीं करना चाहते हैं लेकिन ये खाली व्यवहारिक ज्ञान है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और जब तक व्यक्ति सब कुछ जाने और अपने आप को ना जाने तो वह अज्ञान में ही है। इसी कारण भगवान बोल रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं ज्ञान हैं क्योंकि ये ज्ञान का उदय भी कराती हैं। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं। कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख। तो इस प्रकार के अंतः क्रियाओं को ज्ञान की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। मतलब नम्रता, अधम्बता, अहिंसा, इस प्रकार से यदि इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, 24 तत्व अर्थात पंच महाभूत, इंद्रियों के विषय, तो इनका ही विकार, इनका ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है यह ज्ञान। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्ति अहंकार से युक्त रहेगा वो ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहला शब्द ज्ञान के संबंध में किया गया है अमानित्व। अगर व्यक्ति नम्र नहीं है तो वो ज्ञान कैसे स्वीकार कर पाएगा? वो तो यही सोचेगा कि मैं जानता हूँ, वो परफेक्ट है, वो मुझसे अधिक कौन जानता है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। तो यहाँ तो कोई समझाना नहीं है, 24 तत्वों की चर्चा हम कर चुके हैं और इसमें हम सब इस शरीर में हम बंधे हुए हैं तो इससे कैसे निकल सकते हैं? निकलने का अर्थ ये नहीं है कि हम मर जाएं, क्योंकि मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है और उसमें बंधन रहता है। निकलने का अर्थ ये है कि व्यक्ति सूक्ष्म शरीर के बंधन से निकल जाए और दोबारा इस जगत में ना आए, शरीर धारण ना करे। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मयि चानन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है, अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी ये अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इसके परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। एक, अनन्य भक्ति योग क्या है उसके बारे में प्रभुपाद जी बताएंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे प्रभुपाद बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि अनन्य भक्ति योग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति जो रोज की जाती है। सकाम भक्ति में हो सकता है कि जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो कृष्ण की भक्ति ना करे, लेकिन निष्काम भक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति समझे कि मैं कृष्ण का दास हूँ और गुरु के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की भक्ति करे। और इस प्रकार की भक्ति करने से वो गुणों के दोषों से मुक्त होकर के सारे सद्गुणों को प्रकट कर लेता है जो आत्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं। तो ये बात प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि अगर किसी के जीवन में भक्ति नहीं है तो फिर बाकी सारे ज्ञान के जो अंग हैं, अगर मान लीजिए वो नम्र हो या अहिंसा भी नहीं कर रहा हो, शांति भी इसके जीवन में है, शांति का मतलब टॉलरेंस, तो उसका कोई खास लाभ नहीं है। और इस चीज़ को श्रीमद् भागवत में भी बोला गया है कि अच्युत भाव वर्जम वर्जनम, मतलब अगर वो निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान है, निराकार ब्रह्म का भक्ति अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है उसमें, या ब्रह्म पे ध्यान कर रहा है, लेकिन अगर वो अच्युत भाव से वर्जित है, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, निरंजन मतलब निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, वो भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अच्युत भाव से वर्जित होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति से पूरित नहीं होता है। तो यानी ज्ञान का मुख्य स्रोत या ज्ञान का जीवन है भगवान कृष्ण की भक्ति, और वो भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। अनन्य योग का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा और किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, और अव्यभिचारिणी का मतलब भी यही है कि कृष्ण की भक्ति करते हैं और नित्य करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फिर दूसरे दिन किसी और देवता की पूजा करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद किसी और देवता की पूजा करना शुरू कर दिया, ये उचित नहीं है, ये अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, अपितु ये व्याभिचारी भक्ति है। जैसे कोई विवाहिता स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी और पर पुरुष का संग करती है तो उसको व्याभिचारिणी कहा जाएगा, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं, तो उनको छोड़ करके किसी और देवता का आश्रय ले व्यक्ति, तो ये व्याभिचारी भक्ति कहलाएगी। तो ये भक्ति से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, नित्य भगवान के चरणों में स्थित भक्ति, दृढ़ निष्ठ भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा ज्ञान के सारे अन्य अंग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। एक बात श्रील प्रभुपाद ने और बात करी है बहुत महत्वपूर्ण, की भक्ति तभी शुरू होती है जब व्यक्ति गुरु स्वीकार करता है। प्रायः लोग अपने मन माने तरीके से भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होती है, और प्रायः भक्ति होती भी नहीं है, वो एक मनोरंजन सब प्रकार का होता है। जब मन आया भक्ति कर ली, जैसे मन आया भक्ति कर ली, ये एक प्रकार का समाज के लिए उत्पात हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करे। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, एक भक्त हम लोग गए प्रचार कार्य में और एक भक्त को हमने बोला कि आप भगवान को फूल माला अर्पित कीजिए, तो भगवान को फूल माला ऐसे अर्पित करने लगे जैसे हम लोग भगवान को नैवेद्य दिखाना भोग लगाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तरीका सही नहीं है, उसमें जल छिड़क करके भगवान को माला पहनाई जाती है, तो भगवान की तस्वीर को तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने उनको समझाया ये बात कि देखिए कि एक छोटा सा कार्य, एक छोटी सी सेवा है भगवान को माला अर्पण करना, उसके लिए भी एक व्यक्ति चाहिए जो हमें सिखाए, केवल किताब पढ़ करके हम नहीं समझ सकते। उसी पर तो आप समझ सकते हो कि भक्ति सीखने के लिए कितनी आवश्यकता है। तो इसलिए ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि गुरु को स्वीकार के बिना हम भक्ति ठीक से नहीं कर सकते। शिक्षा गुरु भी होने चाहिए और दीक्षा गुरु भी होने चाहिए। हाँ, कभी कभी इसका उल्टा लोग करते हैं कि अब हमने दीक्षा गुरु ले लिया है, स्वीकार कर लिया, अब हमें कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये भी गलत है। हमें शिक्षा की आवश्यकता भी है और दीक्षा की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम पूरे जीवन भक्ति में प्रगति भी करते रहते हैं और भक्ति में कुछ गलती भी करते रहते हैं। और गलती ना भी कर रहे हों और अच्छे से हम भक्ति कर सकते हैं अगर गुरु का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विलर्भता या अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहां तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी ने दो शब्दों को, अमान्यत्व और अधम्बित्व को एक्सप्लेन किया है। एक बात तो ये है कि हम लोग शरीर नहीं है और ये बिल्कुल स्पष्ट सत्य है। तो जो भी सम्मान या अपमान या सुविधा मिलती है वो व्यक्ति हमारे शरीर को देता है। तो ये हमारे कर्मानुसार, भगवान भगवत कृपा अनुसार जैसे भी आती है जाती है, इससे साधक को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपने विवेक का उपयोग करके इन चीजों के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा हो सकता है और होता भी है कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो लोग उसको सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि उसके पास अधिक ज्ञान हो सकता है, उसका इंद्रिय संयम अधिक हो सकता है। लेकिन उसके लिए, उस साधक के लिए बहुत बड़ा दिक्कत होगी अगर वो इन चीजों से प्रभावित होकर के इनके लिए भजन करने लगे, अर्थात सम्मान प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान बांटे। ये गलत है। ज्ञान बांटने चाहिए ताकि लोगों का लाभ हो, उनका जीवन में पवित्रता आए, उनके जीवन का अंधकार नष्ट हो, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा सम्मान करें। इस संबंध में हमारे गुरु महाराज इस बात को बड़ा अच्छे से बोलते हैं कि यदि हम लोगों को सम्मान देने में सुख का अनुभव करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि हम हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में सम्मान दे सकते हैं। लेकिन यदि हम सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं तो हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में हमें सम्मान नहीं देगा। तो इस प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो ये अनावश्यक रूप से सम्मान पाने की इच्छा, ये इसे त्याग देना चाहिए। वस्तुतः हम सभी लोग इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में डूब रहे हैं। मान लीजिए आप या मैं सागर में डूब रहा हूं, तो हम अपनी कौन सी योग्यता, कौन सी भौतिक योग्यता के ऊपर अहंकार कर सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी योग्यता इस प्रकार से नहीं है जिसके द्वारा हम लोग अपने को प्राउड फील करें, अहंकारित, अहंकार से युक्त फील कर अनुभव करें। फिर भी हम लोग देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए अहंकार से युक्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि लोग हमारा सम्मान क्यों नहीं कर रहे। तो एक बीमारी है या अज्ञान है। और दूसरा बात यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, अधम्ब, अधम्बित्व मतलब दम्भ के कारण, यानी कि कोई व्यक्ति धर्म के बारे में जाने ना, लेकिन कोई विशेष संस्था जो कि धर्म का प्रचार में ठीक से कर भी नहीं रही हो, लेकिन वो बहुत कह सकते हैं प्रसिद्ध हो, तो उस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कभी कभी ऐसी संस्थाओं का वो संग करता है, ऐसी संस्थाओं से युक्त हो जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। तो धर्म प्रचार का उद्देश्य इसी होना चाहिए कि लोगों के जीवन से अज्ञान नष्ट हो, उनका जीवन आलोकित हो। अन्यथा और कोई तरीका नहीं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन अपने को धार्मिक गुरु कहलाना और अपने मन मुताबिक प्रवचन करना, ये सब दम्भ का ही कारण है, ताकि लोग, और उसका मुख्य कारण है कि लोग अमानी नहीं हैं, लोग सम्मान चाहते हैं। और उसके योग्य नहीं है और फिर भी सम्मान चाहते हैं, ये दम कहलाएगा। ठीक है, कपट करना। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। बहुत सुंदर। प्रायः लोग अहिंसा का अर्थ समझते हैं कि किसी को जान से नहीं मारना, ये तो अर्थ है ही, लेकिन साथ साथ हम नहीं मारेंगे लेकिन मृत्यु तो उस व्यक्ति की आएगी ही। तो ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और आप देख रहे हो कि एक ट्रक आ रहा है, तो ठीक है आपने उसको गोली नहीं मारी, लेकिन अगर आप उसको ये नहीं बताते हो कि देखो ट्रक आ रहा है, आप सतर्क हो जाओ और आपकी मृत्यु हो सकती है, तो क्या आपने उसके प्रति अहिंसा नहीं करी? क्षमा कीजिएगा, आपने उसके प्रति हिंसा नहीं करी? निश्चित रूप से करी। अगर आपको नहीं पता होता है तो एक अलग बात है, लेकिन जानते बूझते हुए भी यदि हमने उसको नहीं बताया उस खतरे के बारे में, तो निश्चित रूप से हम हिंसा कर रहे हैं। एक और बात है कि अगर हमारा लड़का, हमारा बच्चा, हमारा पति या पत्नी वो रोड क्रॉस कर रहा हो और इस प्रकार से कुछ हो, तो निश्चित रूप से हम बोलेंगे। लेकिन शायद कोई व्यक्ति अगर हमसे संबंधित ना हो तो हम इतना ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसीलिए यहां प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसको दिव्य ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, अगर वो प्रचार नहीं करता है तो जो सामान्य लोग हैं जो भगवान के बारे में नहीं जानते, नाते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में नहीं जानते, तो ऐसे लोग वो तो बेचारे कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाएंगे। और अभी जो मानव जीवन मिला है उनको, उसमें अगर उन्हें भक्ति की शुरुआत नहीं करी तो अब दोबारा मानव जीवन कब मिलेगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रचार कार्य में कोई सहयोग नहीं करते या करना नहीं चाहते बावजूद इसके कि उनको ज्ञान है, तो ये बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जिनके पास धन है वो भगवत प्रचार के कार्य में उसका उपयोग नहीं करते, तो ये भी हिंसा का कारण है, ये भी हिंसा कही जाएगी। और ऐसा व्यक्ति का अज्ञान, वो खुद व्यक्ति अज्ञान में चला जाएगा, उसका ध्यान टिक नहीं पाएगा। जैसे एक लोटे में छेद कर दिया जाए तो जितना भी ज्ञान है वो धीरे धीरे करके, जितना भी जल है वो धीरे धीरे करके रिस जाएगा। उसी प्रकार से जो ज्ञान दूसरों को बांटा नहीं जाता वो उस धारण करने वाले व्यक्ति के चित्त से या जीवन से भी चला जाता है। इसीलिए श्रीला चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, प्राणैरर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि अपने प्राणों से, अपने प्राण से मतलब अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, अपने अर्थ से, जो भी है उससे दूसरों का कल्याण करना चाहिए, श्रेय परम श्रेय का कल्याण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसका एक और अर्थ हमने सुना था कि लोगों में भोगों की वासना वैसे ही है, पहले से हृदय में है, और इस प्रकार से उनको चलचित्र दिखाना या और कोई दृश्य प्रस्तुत करना जिसके द्वारा उनके हृदय में हिंसा बढ़े, क्षमा कीजिएगा, उनके हृदय में काम वासना बढ़े जो उनको पहले से जला रही है, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है जीवों के प्रति। तो जितने भी टीवी लोग बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं जिसमें वो बुरे दृश्य दिखाते हैं, जिससे जीवों की काम वासना, भोग की वासना बढ़ जाती है, तो वो भी जीवों के प्रति बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन चलचित्रों को या इन चीजों को देख रहा है तो वह अपने प्रति हिंसा कर रहा है, क्योंकि उसका वो चित्त जला रहा है। और निश्चित रूप से अगर वो अपने प्रति हिंसा करेगा तो वही चीज दूसरों को बांटेगा, अरे देखो वो पिक्चर बहुत अच्छी थी वहां जाकर देखो, और ये न्यूज थी बहुत अच्छी जाकर देखो। तो इस प्रकार की हिंसा वो करेगा और उससे जीव और खुद भी विमुख होगा और दूसरों को भी विमुख करेगा। महाराज इस संबंध में बोल रहे थे कि अगर किसी ने अखबार पढ़ लिया तो ठीक है, तुमने कचरा अपने मन में डाल दिया, लेकिन उस कचरे को अब दूसरों के ऊपर तुम मत लपो। ठीक है आपने सुन लिया, आप शांत होकर बैठ जाइए, लेकिन व्यक्ति उस पर इतनी व्याख्या करता है जितनी लोग गीता भागवत पे व्याख्या नहीं करेंगे। तो ये चीज उचित नहीं है और व्यक्ति को बचना चाहिए। इस प्रकार से दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, बहुत सुंदर। ये गुण सहिष्णुता का उदाहरण चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तरोरेव सहिष्णुना, पेड़ के समान व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए। बहुत अच्छे इसका व्याख्या करने का व्याख्या तो हम क्या कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कुछ बताने के लिए। देखिए, एक बात तो ये है कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनके बारे में भौतिकतावादी व्यक्ति सोचते हैं कि वो लोग पागल हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है, एक आध्यात्मिक सत्यता है, शायद स्पिरिचुअल रियलिटी कहा जाएगा, ऐसा कुछ है। इस धारणा को तो वो लोग ग्रहण ही नहीं करते। तो अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई एक आध्यात्मिक जगत है और भजन करके आप वहां पर जा सकते हो, तो वो उसको कपोल कल्पना मानेंगे। लेकिन आध्यात्मिकतावादी ये लोग जानते हैं कि ये लोग पागल हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतमापनोति, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय प्रीति के लिए कार्यों के में लगे हुए हैं, इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय भोग के कार्यों में लगे हैं, वो नूनम प्रमत्तः निश्चित रूप से पागल है। तो आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिकवादी जो है वो जानते हैं कि भौतिकतावादी वाले लोग पागल हैं और भौतिकतावादी वाले सोचते हैं कि ये लोग पागल हैं। इस कारण से पागलों को जिस प्रकार से हम लोग सराहना नहीं करते हैं, उसी प्रकार से प्रारंभ में कम से कम भौतिकतावादी व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्तियों का या कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की सराहना नहीं करेंगे। पहले तो आपका मजाक बनाएंगे, फिर आपसे क्रोध करेंगे, और उसके बाद अगर उनके ऊपर कृपा होती है तो वो आपकी सराहना करेंगे, समझ पाएंगे। तो इस कारण से सहना चाहिए। इस संबंध में एक और इंटरेस्टिंग बात है। एक महाराज जी समझा रहे थे, कह रहे थे एक बार उनका ऑपरेशन हो रहा था, उनके गले का ऑपरेशन हो रहा था कंठ का, और उनको बेहोश किया गया था। तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था और अकस्मात उनको होश आ गया। तो होश में उन्होंने देखा कि उनके गले के आसपास, शरीर के आसपास बहुत खून है, जो कि स्वाभाविक है, उनका ऑपरेशन हो रहा था। तो उनको लगा कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से मुक्का चलाया और डॉक्टर की ठोड़ी पे मार दिया। तो डॉक्टर तो समझ रहा था कि ये गलत समझ रहे हैं, इसलिए ने प्रहार किया। तो डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया कि उनका ऑपरेशन करना छोड़ दिया, फिर उनको मेडिसिन दिया, वो बेहोश हो गए, उनका ऑपरेशन पूरा किया और उसके बाद वो बाद में वो ठीक हो गए। तो महाराज जी बाद में उनसे क्षमा मांगे कि नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपको, मैंने प्रहार किया। तो कहते हैं ये हो जाता है या होता ही रहता है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अपना कर्तव्य कर रहे थे। कर्तव्य क्या था? उस रोगी का इलाज करने का प्रयास कर रहे थे, ऑपरेशन करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो रोगी क्या सोच रहे हैं? अज्ञान में सोच रहे हैं कि ये मेरा अहित करना चाहते हैं, और उनके उन्होंने मुक्का चला दिया। उसी बात को महाराज बोल रहे थे कि जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत से लोग हमको परेशान कर सकते हैं और वो सोच सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारा नुकसान करने के लिए आए हैं। लेकिन आप जैसे देख रहे हो, भक्त लोग अहिंसा का पालन करते हैं, जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, भले ही वो जीव अपना कल्याण ना करना चाहे। जैसे कि हिरण्यकश्यप के केस में भी प्रहलाद महाराज ने कभी भी हिरण्यकश्यप से द्वेष नहीं किया, भले ही हिरण्यकश्यप मान रहा था कि मेरा जो बेटा है वो तो बहुत खराब हो गया है और मेरी बात नहीं मानता, बिल्कुल बिगड़ गया है। तो इस बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया था, तो प्रहलाद जी ने एक ही वरदान मांगा कि भगवान, मेरे पिताजी ने मेरे प्रति बहुत अपराध किए हैं, इससे उनकी दुर्गति होगी, तो कृपया आप उनका उद्धार आप कर दें। तो आप ये देख सकते हो कि प्रहलाद महाराज कितने सहिष्णु थे। ये बड़ा सुंदर गुण है, और इस गुण को
शुभधा लक्षण में बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं उनके अंदर ये गुण आ ही जाता है कि वो सभी को प्रिय होते हैं और सब उनको प्रिय होते हैं। तो इस कारण से सहिष्णुता का गुण एक भक्त के जीवन में सहज रूप से आ जाता है। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हरिदास ठाकुर जी का, जीसस क्राइस्ट का, सभी का, जहां वो समझ रहे हैं कि जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो इस कारण से वो सहन कर लेते हैं और साथ साथ सहन करने के साथ साथ उनकी मंगल कामना करते हैं। हमारे लिए दो स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि जब हमारा अपमान हो तो हम कम से कम सहन कर लें और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना ना रखें। आप डॉक्टर वाले उदाहरण को समझ सकते हैं कि वो द्वेष भावना नहीं रख रहे थे रोगी से, वो जान रहे हैं कि रोगी को पता नहीं है। और दूसरा स्टेप है कि उनके हित के लिए कार्य करें, जैसा कि वो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता रहा, उनका हित करता रहा। बहुत सुंदर गुण है कि जो लोग हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहे हैं उनके प्रति भी सही भावना, अच्छी भावना रखना और उनका कल्याण करने की भावना रखना। ये भगवान को बहुत प्रिय है ये गुण, और जितनी मात्रा में गुण हमारे हृदय में मतलब प्रकट हो जाएगा उतनी मात्रा में भगवान के नाम के प्रति भी हमारी दृष्टि बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा गुण है। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी को मुसलमानों ने 22 बाजारों में मारा और भगवान की कृपा से उन्हें कोई दर्द भी नहीं हो रहा था और भगवान का चक्र उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत आ गया था और उन मुसलमान सैनिकों को मारने के लिए वो तैयार भी था, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, कृपया इनको आप क्षमा कर दें। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने सहिष्णुता का गुण तो प्रकट किया ही, साथ साथ उसमें ये भी गुण था कि वो जो आतताई थे, जो उनका नुकसान कर रहे थे उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखी। तो ये बहुत सुंदर गुण है जो एक वैष्णव के जीवन में परिवर्तन करते रहने से।